नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के दावे का समर्थन किया। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच संघर्षों को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्रीय समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित दिल्ली कॉलोनी में आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। सेला ब्रिगेड की देखरेख में भारतीय सेना ने आज सैपर दिरांग में एक फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया। स्पेयरहेड डिवीजन के तत्वाधान में स्पेयरहेड गनर्स ने 22 अरुणाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन के लगभग 120 एनसीसी कैडेट्स के लिए बेसिक यूएएस एवं सीयूएएस प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। क्रिकेट में भारत का बर्मिंगम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच जारी और फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहा दो जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया है कि इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एमटीएल बहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मोम्बासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थित पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों का निशाना बनाकर किए गए इन हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे हॉर्मुज जल डमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया गया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किए जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ोल्फ़ाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फिलिस्तीन और इसराइल के बीच संघर्षों को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्रीय समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथ ने कहा है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया है कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित है और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित दिलीदी कॉलोनी में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपदा में घरों का नुकसान पशुधन तथा सार्वजनिक अवसंरचना को व्यापक नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से 500 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं और अनेक परिवार बेघर भी हो गए हैं। हालांकि संपत्ति के नुकसान तथा प्रभावित परिवारों की वास्तविक संख्या का आधिकारिक आंकलन अभी किया जाना बाकी है। जिला प्रशासन ने नुकसान का विस्तृत आंकलन करना शुरू कर दिया है ताकि प्रभावित लोगों के लिए राहत उपायों की तैयारी की जा सके। सेला ब्रिगेड की देखरेख में भारतीय सेना ने आज सैपर दिरंग में एक फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम के जरिए सेना ने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को अच्छी शिक्षा और क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाने के अपने संकल्प को दोहराया है। समारोह में वेस्ट कमिंग जिला उपायुक्त डॉ. दिलीप कुमार, 46 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर राहुल मिश्रा, ADC दिरंग, पंचायत नेता गांव बूढ़ा और चुने गए छात्रों के अभिभावक शामिल हुए। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSE 2026 को सफलतापूर्वक पास करने के बाद जांग और दिरांग के सीमावर्ती गांवों के कुल 25 छात्रों को वुड्स पार्क सैनिक स्कूल हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में दाखिला मिला है। सभा को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने चुने गए छात्रों और उनके माता पिता को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने छात्रों की पहचान करने, उन्हें मार्गदर्शन देने और प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के साथ साथ सैनिक स्कूल में उनके दाखिले के लिए व्यापक इंतजाम करने में 46 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा की। ऐसी पहलों के माध्यम से भारतीय सेना नागरिक सैन्य संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी सार्थक योगदान दे रही है। स्पेयरहेड डिवीजन के तत्वाधान में स्पेयरहेड गनर्स ने 22 अरुणाचल प्रदेश NCC बटालियन के लगभग 120 NCC कैडेट्स के लिए बेसिक अनमैन्ड एरियल सिस्टम UAS एवं काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम CUAS प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये प्रशिक्षण राज्य में 22 AP NCC बटालियन पासीघाट तथा सिगार मिलिट्री सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को उभरती हुई ड्रोन तकनीक की जानकारी दी गई और आधुनिक सैन्य अभियानों में UAS तथा CUAS की भूमिका के बारे में उनकी समझ को और मजबूत किया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क शून्य की सुविधा प्राप्त होगी। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा असानी के दुखद निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा है कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने के उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में खेला जा रहा है। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू हुआ। ताज़ा जानकारी मिलने तक इंग्लैंड बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में 80 रन बना चुकी है। श्रृंखला का दूसरा मैच केफर्ट में बृहस्पतिवार तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सस में डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा है कि भारत टैक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा है कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।